प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा खुल जाएंगे किताबें।
सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम में आपको हमारा नमस्कार। हम आपके लिए एक बार पुनः आपका सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। हमें आशा है कि आप भी अपने रेडियो के आसपास पहुंच गए होंगे, अपनी बाइबल, पेन और नोटबुक लेकर आप भी आज के कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हैं। सो आइए आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व कि कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ मांगें। हम प्रार्थना करें। हे महासामर्थी, जीवित और सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ आपके चरणों में अपने सिर को झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको जीवन दिया और जीवन में ये सुंदर क्षण दिए कि हम आपके पवित्र और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वचन को समझने और ग्रहण करने में आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को हमारे लिए वास्तविक बना दें। यदि कोई श्रोता भाई बहन अविश्वास में चला गया है या उसके जीवन में संदेह उत्पन्न हुआ है, या वो निराश है, चिंता में है, किसी रोग से पीड़ित है या किसी घोर पाप में फंस गया है, प्रभु आप उनकी सहायता करें और उनका छुटकारा करें, क्योंकि आप वास्तव में छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम निर्गमन की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले कार्यक्रम में हमने 11वें अध्याय का अध्ययन किया। 11वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर पिता मिस्र के पहलौठों को मारने की चेतावनी दे देते हैं। इन दिनों हम निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर के द्वारा मिस्र पर भेजी गई महामारियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। महामारियों को भेजने का कारण यह है कि फिरौन ने परमेश्वर को नहीं पहचाना है। उसने परमेश्वर की प्रजा इसराइल को अपने देश से बाहर जाकर परमेश्वर की उपासना करने के लिए अनुमति नहीं दी है, और इसलिए परमेश्वर उसको अपने विषय में बताने के लिए और साथ ही इसराइल के विश्वास को और भी दृढ़ बनाने के लिए उन पर महामारियां भेज रहे हैं, जिससे कि उनके उन देवताओं पर परमेश्वर का आक्रमण हो सके जिन पर वो विश्वास करते हैं। परमेश्वर उनके देवताओं को और उनके अंधविश्वास को व्यर्थ ठहराने के लिए ये महामारियां भेज रहे हैं। 11वें अध्याय में हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने मिस्र के पहलौठों को मारने की चेतावनी दी। ये भी एक महामारी है। इस महामारी के अंतर्गत चाहे पशु हों या मनुष्य हों, सभी के पहलौठे मारे जाएंगे। इसका कारण हमने निर्गमन की पुस्तक के 4वें अध्याय के 22 और 23 पदों में पढ़ा है। आप चाहें तो इसे दोबारा देख सकते हैं। इन पदों में प्रभु परमेश्वर कहते हैं, इसलिए मैंने तुझसे कहा, मेरे पुत्र को जाने दे जिससे कि वह मेरी सेवा करे, परंतु तूने उसे जाने ना दिया। अतः देख, मैं तेरे पुत्र को वरन तेरे पहलौठे को घात करूंगा। परमेश्वर अपनी प्रजा इसराइल के विषय में कह रहे हैं कि तू मेरे पुत्र को जाने दे, अन्यथा मैं तेरे पुत्र को वरन तेरे पहलौठे को घात करूंगा। और इसी प्रकार से 22वें पद में प्रभु ने कहा, तब तू फिरौन से कहना, अर्थात प्रभु परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है, इसराइल मेरा पुत्र है, वो मेरा पहलौठा है। तो इस प्रकार से परमेश्वर फिरौन को पहलौठों को मारने की चुनौती देता है, चेतावनी देता है। फिरौन ने परमेश्वर के पहलौठे अर्थात इसराइल को जाने नहीं दिया, और इसलिए परमेश्वर भी मिस्र के पहलौठे को घात करने वाले हैं। श्रोता, अब आप कहेंगे कि परमेश्वर उनके पहलौठों को क्यों घात करना चाहते हैं। स्मरण रहे, मिस्रियों के पहलौठे उनके देवताओं के लिए समर्पित थे, तो वास्तव में परमेश्वर उन देवताओं के पहलौठों को मारेंगे। फिर भी फिरौन का मन प्रभु ने कठोर कर दिया, उसने इसराइल को जाने ना दिया। आज हम अध्याय 12 को आरंभ कर रहे हैं। 12 अध्याय में जो मुख्य विषय हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसराइल अब से अपने सामाजिक पर्वों के साथ अपना धार्मिक पर्व मनाया करेंगे। सबसे विशेष बात हम ये देखेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे फसह के पर्व की स्थापना। तीसरा हमारा विषय होगा फसह की विधि भी स्पष्ट रूप से यहां पर बताई जाती है। चौथा विषय होगा पहलौठों की हत्या, और पांचवा विषय होगा इसराइल की संतान का मिस्र से निकाला जाना। मित्रवर, फसह का पर्व इसराइलियों के मिस्र से छुटकारे की स्मृति के रूप में स्थापित किया गया, और परमेश्वर ने इसराइल को अपने राष्ट्र के रूप में अपना लिया। ये पर्व इसराइल के नए जन्म की स्मृति के रूप में स्थापित किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इसराइल मिस्र में गए थे तो वे एक परिवार के रूप में गए, किंतु जब वे मिस्र से निकले तो वे एक जाति, एक राष्ट्र के रूप में निकले। और इस प्रकार से यहां इसराइल जाति का राष्ट्र के रूप में जन्म दिवस मनाया जाता है। अध्याय 12 निर्गमन की पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहां हम फसे की पर्व की स्थापना के विषय में प्रथम बार पढ़ते हैं। संत पौलुस इसके विषय में पहला कुरंथियों उसके 5वें अध्याय के 7वें पद में इस प्रकार से बताते हैं कि हमारा फसह मसीह है जो बलिदान हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फसह के पर्व का संबंध प्रभु यीशु मसीह से है। इस अध्याय में हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। सो आइए आप हमारे साथ निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के 1-10 पदों को देखिए, जहां इस प्रकार से वर्णन है। तब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का महीना हो, यह तुम्हारे लिए वर्ष का प्रथम महीना ठहरे। इसराइल की समस्त मंडली से कहना कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से प्रत्येक जन अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार घर के पीछे एक एक मेमना ले। यदि एक मेमने के लिए घराना बहुत छोटा हो तो वह अपने घर के निकटतम पड़ोसी के साथ मिलकर लोगों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले और हरेक की खुराक के अनुसार मेमने को बांटे। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो, उसे तुम चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से ले सकते हो। मैंने आपके समक्ष 5वें पद तक पढ़ा है। पहले और दूसरे पद में हमने पढ़ा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए आरंभ का महीना हो, यह तुम्हारे लिए वर्ष का प्रथम महीना ठहरे। मित्रवर, ये अध्याय निर्गमन की पुस्तक को एक अन्य नए विभाग में बांटता है। पहला विभाग 1-11 अध्याय में है। ये इसराइल के छुड़ाने वाले प्रभु के सेवक मूसा के विषय में बताता है। दूसरा भाग 12-14 अध्यायों में, इसमें इसराइल के छुटकारे के विषय में बताया गया है। और इस प्रकार इस अध्याय में हम छुटकारे तथा छुड़ाने वाले के विषय में अध्ययन करेंगे। ये छुटकारा लहू द्वारा हुआ, लहू मेमने का लहू, इसराइल का छुटकारा तथा मिस्र के पहलौठों की मृत्यु। इस स्मृति में जो पर्व स्थापित हुआ वह फसह का पर्व है। परमेश्वर ने लहू और अपनी सामर्थ्य द्वारा इसराइल का छुटकारा किया। मित्रवर, हमारा हमारे पाप तथा उसके दंड से छुटकारा भी लहू और सामर्थ्य द्वारा हुआ है। मसीह यीशु ने जो क्रूस पर अपना लहू बहा दिया, उसके द्वारा हमारे छुटकारे का मूल्य चुकाया गया। जिस प्रकार इसराइल के छुटकारे में मेमने के लहू का, उसी प्रकार हमारे छुटकारे में परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के रक्त का महत्वपूर्ण स्थान है। परमेश्वर कहते हैं, बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। श्रोता, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य छुटकारे के कार्य को हमारे जीवन में प्रभावशाली तथा वास्तविक रूप प्रदान करती है। हमारा छुटकारा तो क्रूस पर यीशु द्वारा किया गया है। उन्होंने अपना बलिदान दिया, हमारे लिए अपना बहुमूल्य रक्त बहा दिया, इसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है। परंतु पवित्र आत्मा का कार्य हमारे भीतर हमारे हृदय में संपन्न होता है और जीवन द्वारा बाहर मनुष्यों के सामने प्रकट होता है, जिससे मनुष्यों के मुख से हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा हो। मित्रवर, ये दिन जो पर्व का दिन है, जो फसह का दिन है, इसराइल राष्ट्र का जन्म दिवस है। जब इसराइल मिस्र में प्रविष्ट हुए तब एक परिवार के रूप में थे, जब वहां से निकले तो एक राष्ट्र के रूप में निकले। सो ये अध्याय इसराइल के निर्गमन के समय को गिनना प्रारंभ करता है, अर्थात इसराइल का मिस्र से निकलना इसी अध्याय से आरंभ होता है। तब तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, इसराइल की समस्त मंडली से कहना, परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि इसराइल की समस्त मंडली से कहना कि इस महीने के 10वें दिन तुम में से प्रत्येक जन अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार घर पीछे एक मेमना ले। यहां हम फसे के पर्व की स्थापना के विषय में पढ़ते हैं। तो यहां पर दो मुख्य बातें हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। पहला है लहू, दूसरा है परिवार। प्रत्येक परिवार का अपना अपना मेमना, ये महत्वपूर्ण बात है। मेमने का तात्पर्य लहू से है, जो दरवाजों की चौखटों और अलंगों पर लगाया गया था। फसह का पर्व एक पारिवारिक पर्व है और यहां ये महत्वपूर्ण है, प्रत्येक परिवार का अपना अलग मेमना। अंतिम महामारी मिस्र पर आने वाली है, परंतु इसराइल की संतान गोशेन देश में बचे रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। सो आइए चौथे पद में हम देखें, यहां इस प्रकार से बताया गया है, यदि एक मेमने के लिए घराना बहुत छोटा हो तो वह अपने घर के निकटतम पड़ोसी के साथ मिलकर लोगों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले और हरेक की खुराक के अनुसार मेमने को बांट ले, और तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो। यह महत्वपूर्ण बात है, यहां पर एक परिवार का अपना एक मेमना, ये परमेश्वर के नियम के अनुसार यहां पर बताया गया है। हजारों मेमनों का वध, इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसराइल के छुटकारे के लिए हजारों मेमनों का वध किया जाएगा। ये समस्त मेमने एक अन्य मेमने के विषय में उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जो इस संसार में आने वाला है, जो सारे संसार के लिए फसह का मेमना होगा। वास्तव में ये पर्व प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की पूर्व घोषणा कर रहा है। ये मेमना प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत कर रहा है। तब छठे और सातवें पद में हम पढ़ते हैं, उसे इसी महीने के चौदहवें दिन तक रख छोड़ना, परमेश्वर उनसे कहते हैं, उसे इसी महीने के चौदहवें दिन तक रख छोड़ना, तब इसराइल की मंडली के सब लोग गोधुली के समय उसे वध करें। इतना ही नहीं, जिन घरों में वे उसे खाएं, उनके दरवाजों की दोनों अलंगों तथा चौखटों के ऊपरी भाग पर वे उसके लहू में से कुछ लेकर लगा दें। श्रोता, यहां कलीसिया के बादलों पर उठाए जाने वाले महाआनंद के दिन के प्रश्न का उत्तर है, अर्थात जिन पर मसीह के लहू की छाप होगी वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये अंतिम निर्गमन का समय होगा, ये अंतिम प्रस्थान होगा। जिस प्रकार से इसराइल के घरों के अलंगों पर, दोनों अलंगों पर, दरवाजों पर, उनकी चौखटों पर लहू का निशान देखकर उनका छुटकारा होगा, वो छोड़ दिए जाएंगे और वो ही मिस्र से बाहर निकाले जाएंगे। उसी प्रकार से जिनके ऊपर विश्वास द्वारा मसीह के रक्त की छाप होगी, वे ही अंतिम दिन बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए उठाए जाएंगे, वे ही बचाए जाएंगे। और इस प्रकार से हम इसे अंतिम निर्गमन कह सकते हैं। तब आठवें पद में हम पढ़ते हैं, और वे उसके मांस को आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ उसी रात को खा रहे। श्रोता, प्रत्येक निर्देश जो इस पर्व से संबंधित दिया गया है उसका एक विशेष अर्थ है तथा महत्व है, क्योंकि उसमें एक संदेश है। ये पद पारिवारिक संगति को दर्शाता है, परिवार एक साथ इस पर्व में सम्मिलित होगा। आज मसीही कलीसिया में इस ढंग को भुला दिया गया है, प्रार्थना तथा प्रभु भोज के समय परिवार को विभाजित कर दिया जाता है। उसके परिणाम स्वरूप परिवार के बहुत से सदस्य संसार में खो जाते हैं। यदि निर्गमन के समय मूसा इसी प्रकार की योजना बनाते तो उस रात असंख्य निर्दोष बालक मिस्र की दास्ता में छूट जाते, वे वहां से निकल नहीं पाते। कितने बच्चे परिवार से पृथक होकर खो जाते। फसह का पर्व पारिवारिक पर्व है और आज कलीसियाएं इस कार्य के प्रति दोषी हैं, क्योंकि वे परिवार को पृथक कर रही हैं। चर्च अर्थात मंडली में परिवार साथ साथ होना चाहिए, सब मिलकर प्रभु भोज में और प्रार्थना में सम्मिलित हों। माताएं प्रार्थना में बैठने या प्रार्थना सभाओं में बैठने के लिए बच्चों के सोने की प्रतीक्षा करती हैं, कभी खेलने भेज देते हैं। एक प्रचारक ने इस प्रकार से बताया कि मैं पौलुस से महान प्रचारक हूं, क्योंकि पौलुस ने मध्यरात्रि तक प्रचार किया और केवल एक ही व्यक्ति सो पाया, परंतु मैं 30 मिनट में ही दर्जनों को सुला देता हूं। मित्र, कुछ भी हो, परिवार को एक साथ पर्व में सम्मिलित होना है। परमेश्वर की रुचि आपके संपूर्ण परिवार में है, हमें उससे दूर नहीं हटना चाहिए। ये पद हमको बताता है, सबसे पहले वो बताता है कि फसह के मेमने को आग में भूंज कर खाना। मित्रवर, आग परमेश्वर के न्याय को दर्शाती है। तब यहां दूसरी बात बताई गई है, अखमीरी रोटी के साथ खाना। खमीर पाप को दर्शाता है, अखमीरी रोटी प्रभु यीशु मसीह को दर्शाती है, जो हमारा आत्मिक भोजन है, जो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र है। तब तीसरी बात, कड़वे साग पात के साथ खाना। कड़वा साग पात अनुभव को दर्शाता है। मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करने के पश्चात हमारा अनुभव सदैव अच्छा ही नहीं रहेगा, उसमें कड़वे और मीठे दोनों अनुभव होंगे। छुटकारे के साथ जीवन की कड़वाहट भी हमको अनुभव करनी पड़ेगी। तब नवे पद में हम पढ़ते हैं, उसमें से कुछ भी कच्चा या जल में उबाल कर न खाना, परंतु उसको उसके सिर, पैर और अतड़ियों सहित आग में भूंज कर खाना। मित्र, ये बलिदान कच्चा ना खाया जाए, क्योंकि ये मनुष्य के पापों के दंड को दर्शाता है। इससे बलिदान तथा न्याय की अग्नि की आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति मसीह के पास आता है, वो एक पापी के रूप में आता है। बलिदान जल में न पकाया जाए, ऐसा नियम दिया गया। इसका तात्पर्य है कि हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें, परंतु कुछ लोग अपने उद्धार के कार्य के लिए जल पर विश्वास करते हैं कि जल द्वारा उनका उद्धार या मुक्ति हो जाएगी। प्रत्येक वस्तु आग में भूंजी जाए, ये अग्निदंड को दर्शाता है। कोई मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए, वो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र होना चाहिए। तब 11 और 12 पदों में हम पढ़ते हैं, तुम उसे इस प्रकार खाना, तुम अपनी कमर बांधे, अपनी जूतियां पांव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, ये यहोवा का पर्व है। मित्र, यहां परमेश्वर ने उसे खाने की विधि बताई है। जब मसीह के पास आप आए, अर्थात उसके बदन को आपने खाया, तो आपकी कमर कसी रहे और संसार को छोड़ने को आप तैयार रहें। संसार और शरीर और शैतान से आप ना कहने को तैयार रहें। मैं ये विश्वास नहीं करता कि आपका मन परिवर्तित हो गया या हो जाए और फिर भी आप पाप में जीवन बिताते रहें। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि आपसे पाप नहीं होगा, वरन आप पाप को अपने जीवन का ढंग नहीं बनाएंगे। आप पाप में आनंद लेना छोड़ देंगे, वरन उसे अपने जीवन से दूर रखेंगे और स्वयं भी उससे दूर भागने का प्रयास करते रहेंगे। तब 12वें पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उस रात्रि को मैं मिस्र देश में से होकर निकलूंगा और मिस्र देश से क्या मनुष्य और क्या पशु दोनों के पहलौटों को मारूंगा तथा मिस्र के सब देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहते हो उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना ही तुम नाश होगे। वह दिन तुम्हारे लिए एक स्मृति दिवस ठहरेगा और तुम उसे यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी में सदा की विधि ठहरकर पर्व माना जाए। श्रोता, परमेश्वर मिस्र के देवताओं के विरुद्ध एक भयानक महामारी लाने जा रहा है। पहलौटे देवताओं को समर्पित थे, परमेश्वर अपनी तोप की नाल अब मिस्रियों के देवताओं तथा मूर्तियों की ओर घुमा रहा है। इसराइली नाश नहीं होंगे, किंतु वे इसलिए नहीं बचाए जाएंगे कि वे बहुत अच्छे हैं, परंतु इसलिए क्योंकि वे अब्राहम के वंशज हैं। यदि मिस्री भी इस आज्ञा का पालन करते तो उस रात्रि वे बच जाते। प्रभु ने कहा, उस रक्त को देखकर मैं तुमको छोड़ता जाऊंगा। यदि मिस्री भी उस रक्त को अपने दरवाजों की आलंगों पर, चौकटों पर लगाते तो वे भी बच जाते। मित्रवर, परमेश्वर किसी योग्यता के कारण उन्हें नहीं बचा रहा है। वे इस कारण नहीं बचाए गए क्योंकि उन्होंने खतना कराया था। परमेश्वर कहता है, मैं उस रक्त को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और कुछ कहने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। उस रात्रि कौन लोग बचाए गए? वे लोग बचाए गए जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और अपने दरवाजों की चौखटों और आलंगों पर मेमने के रक्त को लगाया, जिन्होंने इस लहू के चिन्ह पर विश्वास किया अर्थात मेमने का लहू, वे बचाए गए। प्रभु परमेश्वर यहां कहना चाहता है कि केवल यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है और कोई नहीं, कुछ नहीं। यह लहू कोई मिथ्या या अंधविश्वास नहीं है, परंतु प्रत्येक धर्म पुस्तक में दर्शाया गया सत्य है कि उद्धार केवल लहू के बलिदान के द्वारा है। हमारे देश की धर्म पुस्तक वेदों में बलिदान को मुक्ति का एकमात्र साधन बतलाया गया है। धर्म पुस्तक भगवत गीता भी यही बताती है कि बलिदान ही छुटकारा देता है। समस्त बलिदान एक महान छुटकारा देने वाले बलिदान की छाया मात्र हैं। ऋग्वेद भी बलिदान के पशु के विषय में स्पष्ट वर्णन करते हैं। पवित्र बाइबल हमको यही बताती है कि बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा संभव नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय के 29वें पद में हमको बताया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। मित्रवर, मेरे और आपके पापों का भार एक निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह पर लाद दिया गया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो परमेश्वर पिताजी आपको ये प्रतिज्ञा देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास लाएगा वो कभी नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपको सामर्थ और बल दे कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकें और उस जीवते और सच्चे परमेश्वर को अपना स्वामी और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर अनंत जीवन के भागी हो सकें। अब प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे और अपने वचन की रक्षा करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।